تو سورة المعارج کی تفسیر ہم پڑھ رہے ہیں. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم والذین یصدقون بیوم الدین والذین هم من عذاب ربهم مشفقون ان عذاب ربهم غیر مأمون والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون والذین هم بشهاداتهم قائمون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما. تو سورۃ المعارج کی تفسیر ہماری پچھلی کچھ کلاسوں سے چل رہی ہے دین اسینشلز فار ویمن پروگرام کے اندر. تو آج جو بھی آیات تلاوت کی گئی ہیں سورۃ کی, تو خلاصہ تفسیر تو ہم ان کی پڑھ چکے ہیں پہلے, لیکن اب اس کے معارف و مسائل سے جو باقی رہتا تھا وہ ہم نے پڑھنا ہے. تو پیج نمبر 557 کے اوپر جو آخری پیراگراف ہے وہاں سے ہم شروع کر رہے ہیں کہ مقادیر زکوٰۃ من جانب اللہ مقرر ہیں, ان میں کمی بیشی کا کسی کو اختیار نہیں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کی مقدار, مقادیر مقدار کی جمع ہے, ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ مقرر کر دیا ہے کہ بھئی تمہارے اوپر زکوٰۃ کب واجب ہوگی. اس کو کیا کہتے ہیں؟ نصاب زکوٰۃ, ٹھیک ہے. کہ جب کسی شخص کے پاس یعنی 52.5 تولہ چاندی یا اس کے برابر رقم, ٹھیک ہے, یا اس کے برابر کوئی ایسی چیز جمع ہو جاتی ہے کہ جس پر زکوٰۃ نکالنی واجب ہے, ٹھیک ہے, جس کو لیکوڈ ایسٹس کہہ سکتے ہیں, ٹھیک ہے, سونا چاندی اور ان کے بنے ہوئے زیور, یا جو آپ کے پاس کیش ہے, ٹھیک ہے, یا آپ نے کسی کو قرض دیا ہوا ہے اور اس آدمی سے آپ نے یعنی قرض وصول کرنا ہے ابھی, ٹھیک ہے, تو یہ بھی آپ کا زکاتبل ایسٹ کہلاتا ہے. زکاتبل کا ایک لفظ انگلش کے اندر لوگوں نے بنا لیا ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جتنے اثاثے ہیں نا, اثاثے سمجھتے ہیں, ایسٹس انگریزی کا لفظ ہے, اثاثے اردو کا لفظ ہے, اور مطلب ان کا یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جو ملکیت کے اندر چیزیں ہیں ان کو آپ کے اثاثے کہا جاتا ہے, ٹھیک ہے. آپ کی ملکیت میں کیا کیا چیز ہو سکتی ہے؟ ایک مرد کی ملکیت میں پورا گھر ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اگر وہ اس گھر کا مالک ہے. اگر کرائے کے گھر پہ رہتا ہے تو وہ اس کا مالک نہیں ہوتا, لیکن اگر اپنے گھر میں رہتا ہے اپنی ذاتی ملکیت کا, تو وہ گھر اس کا اثاثہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اس کا ایسٹ ہوتا ہے. اسی طریقے سے جو اس گھر کے اندر چیزیں ہوتی ہیں, جیسے فریج ہے اور فرنیچر ہے اور ڈیپ فریزر ہے اور ایئر کنڈیشنرز ہیں, ٹھیک ہے, جو بھی گھر کے اندر چیزیں ہیں یہ سب بھی گھر کا اثاثہ ہوتا ہے نا, ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ مرد کے پاس گاڑی ہوتی ہے, گاڑی بھی اس کا اثاثہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. پھر اس نے کہیں پہ زمین خرید کے رکھی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, تو وہ بھی اس کا اثاثہ ہے, صحیح ہے نا. اور عورت کے اثاثے کیا ہوتے ہیں؟ کبھی اور عورت کے نام پر بھی گھر ہوتا ہے. نام پر گھر ہونے کا مطلب یہ کہ یعنی عورت کبھی ملکیت میں کوئی گھر ہوتا ہے نا, ہو سکتا ہے باپ نے تحفے میں دے دیا ہو, تو عورت کی ملکیت میں وہ گھر ہے, صحیح ہے. یا اس کی ملکیت میں کوئی گاڑی بھی ہو سکتی ہے, اس کی ملکیت میں کوئی زمین بھی ہو سکتی ہے. عورت کی ملکیت میں عمومی طور پر یعنی زیور ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, جو اس کو جہیز میں ملے ہوتے ہیں ماں باپ کی طرف سے, یا اس کو شوہر نے جو ہے وہ تحفے میں دے دیے ہوتے ہیں, یا کبھی عورت نے خود کوئی کمائی کری ہوتی ہے, اس نے زیور خریدے ہوتے ہیں, تو وہ زیور بھی اس کے اثاثہ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, ایسٹس ہوتے ہیں. بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں نا انسان کے ایسٹس, ठीक है, लेकिन क्या हर एसेट के ऊपर जकात निकालनी है? क्या हर एसेट को आपने यानी उसकी कीमत निकाल करके उसका 2.5% जकात में देना है? नहीं, हर एसेट का, हर असासे की जकात नहीं निकालनी होती, बल्कि सिर्फ खास खास असासे होते हैं कि जिन पर जकात निकालनी होती है, हर एक पर नहीं निकालनी होती। मिसाल के तौर पर आप जिस घर में रह रहे हैं, अब वो घर आजकल कराची शहर के अंदर एक आम घर जो होता है वो 2 करोड़ रुपए से कम का नहीं होता, 2 करोड़ रुपए से कम का कोई घर नहीं होता आजकल कराची कराची शहर के अंदर, ठीक है। वैसे इंडिया में चले जाएं तो वहां पे आपको लाखों के घर भी मिल सकते हैं, तो लाखों का घर होता है ना, लेकिन क्या उस घर के इस जो कीमत है 2 करोड़ रुपए, क्या उस 2 करोड़ के ऊपर आप जकात निकालेंगे? नहीं। क्यों? इसलिए कि वो घर आपके इस्तेमाल का घर है, आप उसके अंदर रहते हैं, आप उस घर से जो है वो पैसे नहीं बना रहे, कारोबार नहीं कर रहे आप उस घर के कीमत के ऊपर, ठीक है। तो ये जो घर है ना, ये आपका असासा तो है, लेकिन ये जकातबल असासा नहीं है, यानी इसके ऊपर जकात नहीं निकाली जाएगी। उसी तरह आपके पास एक गाड़ी है, बेशक बहुत महंगी गाड़ी हो, मर्सिडीज गाड़ी हो आपके पास, BMW गाड़ी हो, लेकिन चूंकि ये आपके इस्तेमाल की गाड़ी है, आप उसके ऊपर बैठ करके अपने दफ्तर जाते हैं या आप अपने रिश्तेदारों के घर जाते हैं, शादी ब्याह की तकरीबात अटेंड करने जाते हैं, ये आपके इस्तेमाल की गाड़ी है, तो बेशक वो मर्सिडीज गाड़ी हो, रोल्स रॉयस गाड़ी हो, लेकिन इस गाड़ी के ऊपर आप जकात नहीं निकालेंगे कि भाई ये गाड़ी जो थी ना, ये 10 करोड़ रुपए की गाड़ी थी, तो मैं 10 करोड़ का की जकात निकालूंगी। नहीं, इसके ऊपर कोई जकात नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो ये एसेट तो आपका है, लेकिन ये जकातबल एसेट नहीं है, ठीक है। तो अब जकातबल एसेट क्या होते हैं? जकातबल एसेट जो होते हैं वो सिर्फ जो आपके पास नकदी होती है, कैश, चाहे घर में रखा हुआ आपने कैश या आपने बैंक अकाउंट में सेव किया हुआ, कैश के ऊपर आपको जकात निकालनी होती है। उसी तरीके से जो सोना और चांदी के जो जेवर होते हैं, ठीक है, सोना चांदी, तो ये भी जकातबल एसेट हैं, इनके ऊपर भी जकात निकालनी होती है। आपने कोई जमीन खरीदी हुई है, लेकिन उस जमीन को आपने किस नियत से खरीदा हुआ है? आपने इस नियत से खरीदा हुआ है कि जब इसकी कीमत बढ़ेगी मार्केट में तो मैं उसको बेच दूंगी, ये नियत है आपकी, बिल्कुल क्लियर ये नियत है कि जब उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ेगी तब मैं उसको बेचूंगी ताकि मुझे नफा हो जाए। तो ये जो जमीन आपकी है ना, ये आपने कारोबारी नियत से जमीन खरीदी है, उस जमीन की जो भी कीमत होगी उसके ऊपर आपको जकात निकालनी होगी, अगर आपने कारोबारी नियत से उस जमीन को खरीदा है। लेकिन अगर आपने इस नियत से खरीदा है कि मैं कुछ अरसे के बाद अल्लाह ताला जब मुझे और पैसे देगा तो मैं उस जमीन के ऊपर अपना मकान बना लूंगी, ठीक है, और अपना मकान बनाकर शायद मैं अपने इस्तेमाल में लेकर आऊं या अपने बच्चों के इस्तेमाल में लेकर आऊं, जो भी करूंगी, ठीक है, लेकिन मकान बनाने की नियत है ना, ठीक है, रहने का मकान बनाने की नियत है, तो उस जमीन के ऊपर जकात नहीं निकाली जाएगी। तो वो जमीन जकातबल एसेट कब बनेगी? अगर आपकी खालिसतन कारोबारी नियत हो तब वो जकातबल एसेट बनेगी, अदरवाइज वो जकातबल एसेट नहीं बनेगी, ठीक है। ये कुछ पूरा जकात की क्लास तो ये है नहीं, लेकिन थोड़ी सी बातें आपको जकात के बारे में यहाँ बता दी। किसी को कोई सवाल है इस, वैसे ये जकात की क्लास है नहीं तो जकात के बारे में हर सवाल का मैं जवाब दे नहीं सकूंगा अभी, ठीक है, टाइम की भी कमी की वजह से, और मैं कोई मुफ्ती हूं भी नहीं वैसे भी, ठीक है। तो अल्लाह ताला ने ना ये सारी चीजें मुकर्रर कर दी हैं कि किस चीज पर जकात निकालनी है, किस चीज पर जकात नहीं निकालनी है, ठीक है। तो होता यह है कि जो आपके पास जकातबल एसेट्स हैं, जैसे जेवर है, कारोबार के लिए आपने कोई दुकान खरीदी हुई है, या आपने जो है वो कारोबार के लिए कोई गाड़ी खरीदी हुई है, यानी उस गाड़ी को बेच करके आपने नफा कमाना है, और आपने आपके पास जो कैश है, ये सब जकातबल एसेट्स हैं। इन जकातबल एसेट्स की जो वैल्यू है ना, जो प्राइस है इन जकातबल एसेट्स की, इनको आप जमा करते हैं, ऐड करते हैं किसी कागज के ऊपर इन सबको लिख करके, और देखते हैं कि इनकी टोटल वैल्यू क्या आ रही है। अगर ये टोटल वैल्यू 52.5 तोला चांदी की कीमत से ज्यादा आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास, यानी आप साहिबे निसाब हैं,
आप क्या हैं? साहिब निसाब, कि आपके पास निसाब है जकात का। मतलब ये है कि आपको जकात निकालनी पड़ेगी। और अगर इन सारे जकातबल एसेट्स की टोटल कंबाइंड वैल्यू 52.5 तोला चांदी से कम आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि आप साहिब निसाब नहीं हैं, आपको जकात नहीं निकालनी है। ठीक है, तो ये जो 52.5 तोला चांदी का निसाब अल्लाह ताला ने मुकर्रर किया है ना, ये कोई तब्दील नहीं कर सकता। कोई तब्दील नहीं कर सकता कि नहीं 52.5 की बजाय जो है ना, मैं इसको जो है वो 50 तोला चांदी कर देता हूं। नहीं, कोई इसको तब्दील नहीं कर सकता, ये अल्लाह ने मुकर्रर किया हुआ है। उसी तरीके से जकात कितनी निकालनी है, 2.5% निकालनी है, 100 में से 2.5। ठीक है, तो ये भी कोई चेंज नहीं कर सकता। सही है, तो इस आयत का ये मतलब है, वल्लज़ीन फी अमवालहिम हक्कुम मालूम। इस आयत से मालूम हुआ कि मकादीर ज़कात अल्लाह ताला की तरफ से मुतय्यन और मालूम है, जिनकी तफसील रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अहादीसे सहीहा में मनकूल है। ठीक है, यानी ये मकादीर मालूम कहाँ से होते हैं? ये कुरान से मालूम नहीं होते, बल्कि ये नबी रसूलुल्लाह की हदीसों से मालूम होते हैं। अगर कोई कहे कि नहीं मैं तो सिर्फ कुरान को पढ़ूंगा और कुरान को फॉलो करूंगा, तो भाई फिर जकात का निसाब क्या है, जकात के कितना आपने जकात निकालना है, ये सब आपको कुरान से तो पता नहीं चलेगा। जैसा जैसे कि नमाज में कितनी रकतें पढ़नी है, जुहर में कितनी पढ़नी है, असर में कितनी पढ़नी है, ये सब कुरान से पता चलता है? नहीं, कुरान में तो यही नहीं जिक्र इसका। तो अगर कोई हदीसों का इनकार कर दे कि नहीं हदीस तो सही नहीं है भाई, ठीक है हदीस का तो कोई एतबार नहीं है, अल्लाह ताला ने तो कुरान की हिफाजत का वादा किया है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफिज़ून, हदीस की हिफाजत का तो कोई जिक्र नहीं किया हुआ है, तो इस वजह से ना मैं कुरान पर तो ट्रस्ट करता हूँ, हदीस पर मैं कोई ट्रस्ट नहीं करता। ठीक है, तो ये शख्स जो है ना, पहली बात तो ये अटरली कंफ्यूज इंसान है, इसको पता ही नहीं है कि ये क्या क्या रहा है। सही है, असल में हकीकत यह है कि बिल्कुल, यानी जिसको कहते हैं ना उज्जट जाहिल इंसान, ये ऐसा इंसान है, क्योंकि ये जो बात कर रहा है ना, इसको कुछ पता नहीं है कि कह क्या रहा है। क्यों? इसलिए कि जो कुरान है, ये कुरान भी तो हदीस ही है एक्चुअली। कुरान क्या है? कुरान भी तो हदीस है। कैसे? किसी को पता है इसका जवाब? अगर आप आपसे हम पूछें कि कुरान हदीस कैसे है, कुरान भी तो हदीस है। तो अगर आप कहें कि हदीस का को कोई एतबार नहीं, तो फिर कुरान का भी कोई एतबार नहीं। ठीक है, तो अगर आपसे हम पूछें, ताकि आपकी भी थोड़ी सी पूछना मैंने छोड़ दिया वैसे क्लास में लोगों से, तो आप लोग खामोशी से या तो सुनते रहते हैं या पता नहीं अपने दूसरे दूसरे काम करते रहते होंगे, तो जरा आपकी भी इनपुट होनी चाहिए ना। कुरान हदीस कैसे है? कुरान भी हदीस है, क्या मतलब इस जुमले का? किसी को पता है? अंदाजा अंदाजा है किसी को इस बात का? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही कुरान को लिखने का हुक्म दिया सहाबा को, लिखने का हुक्म दिया, तो इससे वो कुरान हदीस कैसे बन गया? कोई और जवाब? वही ये मतलू है। अच्छा, कुरान भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थ्रू ही हमें मिला है, हदीस कुदसी। नहीं, हदीस कुदसी तो ये नहीं है जी, ये जवाब ज्यादा सही है कि कुरान भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थ्रू ही हमें मिला है। राइट, जिस तरह हदीस जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थ्रू हमें मिली है, तो कुरान भी तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थ्रू ही मिला है। कुरान कोई अलग से कोई थोड़ी आया था कि आसमान से जो है जिब्रील अलैहि सलाम किसी किसी कपड़े में लपेट करके कोई चीज लेकर के आए, और आकर के उन्होंने नबी अलैहि सलाम को दे दिया और कहा कि ये सहाबा को पढ़ पढ़ करके सुना दें आप। ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था ना, ना तो अल्लाह ताला ने हर सहाबी के नाम एक चिट्ठी लिखी थी कि भाई ये चिट्ठी जो है ना, इसको खोलो, इसके अंदर कुरान मौजूद होगा। राइट, ऐसा तो नहीं हुआ था ना। तो क्या हुआ था? जो कुछ अल्लाह ताला की तरफ से आया, नबी अलैहिस्सलाम पर आया, नबी अलैहिस्सलाम ने उसको पढ़ करके उसको सुनाया। पढ़ करके नहीं, क्योंकि किताब तो कोई सामने थी नहीं, कोई कागज तो था नहीं सामने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ फरमाया, ये सब कुछ वही है। कुरान भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक से ही सहाबा ने सुना, और हदीसें जो हैं वो भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक से ही सहाबा ने सुनी। ठीक है, कुरान जो है वो सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते से हमें मिला। इसमें कोई जिब्राइल अलैहि सलाम का किसी को नहीं पता, किसी ने जिब्राइल अलैहि सलाम को ना तो देखा ना कभी जिब्राइल अलैहि सलाम को सुना। ठीक है ना, किसी ने अल्लाह ताला को ना कभी देखा ना कभी अल्लाह ताला को सुना कि भाई ये जो अल्फाज हैं ये तो अल्लाह के अल्फाज हैं। भाई कैसे पता आपको अल्लाह के अल्फाज हैं? आपने कभी सुना अल्लाह को? कभी आपने सुना अल्लाह ताला की तरफ से जो है वो ये कुरान की आयतें पढ़ पढ़ के सुनाई जा रही हैं? कभी भी तो नहीं सुना, किसी ने भी तो नहीं सुना ना। तो जो कुछ सुना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना। ठीक है, तो ये जो कुरान है ना ये भी तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक से ही निकले हुए कलमात हैं, और हदीस के कलमात भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक से ही निकले हुए कलमात हैं। ठीक है, तो फर्क क्या है इन दोनों के दरमियान? फर्क सिर्फ यही है ना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को कह दिया कि ये कुरान की आयात हैं, और जिनको नहीं कहा कि ये कुरान की आयात हैं उनको हदीस कहना शुरू कर दिया गया। कोई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा भी नहीं कि ये हदीस है, नहीं, बस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना बतला दिया कि ये जो मैं कह रहा हूं ये कुरान की आयात है, और उसके अलावा खुद ही लोगों ने ये बात समझ ली कि इस जो चीज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं कही कि ये कुरान की आयात है वो हदीस है। ठीक है, तो इस ये डिफरेंस है खाली कुरान और हदीस के दरमियान। ठीक है, तो अगर आप कहें कि जी मैं हदीस पे यकीन नहीं रखता, हदीस की कोई गारंटी नहीं है, तो भाई कुरान की क्या गारंटी है फिर आपके लिए? तो इसका मतलब ये है कि आप दरअसल जो है ना वो कुरान को भी नहीं मानते, ये खाली आप झूठ बोल रहे हैं, या तो ये कि आप बिल्कुल जाहिल हैं, आपको कुछ पता नहीं है कि फर्क क्या है कि क्या है ये। ठीक है, कुछ आपको तफसील ही नहीं पता, या ये कि आप झूठ बोल रहे हैं। हकीकत ये है कि ना तो आप कुरान को मानते हैं ना आप हदीस को मानते हैं, आप असल में जो है ना वो सिर्फ अपनी मनमर्जी चलाना चाहते हैं, अपने ख्वाहिशात के मुताबिक जिंदगी गुजारना चाहते हैं। ये सारी बातें जो है ना ये तो आप बहानेबाजी कर रहे हैं खाली, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो इसी वजह से ना ज़कात का निसाब जो है ये हदीस से पता चलता है, ये कुरान की जो आयात है उनके अंदर तो ये लिखा ही नहीं है, जिस तरह नमाज के आयात के नमाज की रिकतों के बारे में नहीं लिखा हुआ कुरान के अंदर कहीं भी। ठीक है, तो ये दीन जो है ना ये दीन जो है वो कुरान और हदीस को मुकम्मल तौर पर स्टडी करके फिर ये दीन समझ में आता है, जो कि उलमा ने किया है, फुकहा ने किया है, जबी तो हम दीन की जो अंडरस्टैंडिंग है कि क्या करना है, कैसे करना है, कितना करना है, कब नहीं करना, ये सारी अंडरस्टैंडिंग हम फुकहा से लेते हैं। फुकहा कौन है? इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अहमद इब्ने हंबल रहमतुल्लाह अलैह। ठीक है, ये सबसे मशहूर फुकहा हैं, हम ये सारी तफसीलात फुकहा से लेते हैं। हम एक हदीस पढ़ करके ये नहीं कह सकते कि बस यही करना है और यही दीन है, ये हम नहीं कर सकते। या कुरान की कोई एक आयत पढ़ करके हम नहीं कह सकते कि बस यही करना है, बस इसके अलावा और कोई तरीका नहीं हो सकता, नहीं, क्योंकि ये पूरी की पूरे मजमुए को इकट्ठा करके बात पता लगती है कि क्या करना है और कैसे करना है। और ये काम जो है वो चूंकि हम कर नहीं सकते, हमारे पास इतना वक्त भी नहीं है, हमारे पास इतनी जहनी सलाहियत भी नहीं है, ठीक है, और हमने जो है वो इतना इल्म भी हासिल नहीं किया, इस वजह से हम ये काम कर नहीं सकते। जबकि फुकहा जो थे एक्सपर्ट्स, उन्होंने ये सारे काम किए थे, ठीक है, अपनी जिंदगी लगा दी थी इल्म हासिल करने में, और उन्होंने जो है वो यानी बहुत अल्लाह ताला से दुआएं भी मांगी थी, बहुत ज्यादा तकवा भी इख्तियार किया था अपनी जिंदगी के अंदर, तो इस वजह से ना उनके लिए आसान हो गया था कि पूरी की पूरी दीन को मजमूई हालत में समझ करके फिर अवामुन्नास को, हमारे जैसे लोगों को बता सकें कि भाई तुमने कैसे नमाज पढ़नी है, कैसे जो है वो तुमने ज़कात देनी है, कैसे तुमने जो है वो रोजे रखने हैं, और क्या चीजें गलत हैं क्या चीजें सही हैं। इस वजह से हम फुकहा के मोहताज हैं इसके अंदर। ठीक है, तो ये जो लोग बोलते हैं क्या नहीं तुम इमाम अबू हनीफा को क्यों फॉलो करते हो, तुम्हें तो कुरान और हदीस को फॉलो करना चाहिए, ये पक्के जो है ना ये या तो जाहिल होते हैं, ठीक है, ये यानी इनको खुद पता नहीं होता कि ये कह क्या रहे हैं, या ये कि इनकी नीयत खराब होती है असल में। ये जो ये बात करते हैं ना कि इमाम अबू हनीफा को फॉलो क्यों करते हो, कुरान और हदीस को फॉलो करो, या तो ये जाहिल होते हैं क्योंकि इनको पता ही नहीं होता कि ये कह क्या रहे हैं, या ये बदनीयत होते हैं क्योंकि दरअसल जो है ना ये आपको कंफ्यूज करना चाह रहे हैं। ठीक है ना, ये असल में इनकी नीयत ये है कि ये आपको जो है ना वो नेकी के रास्ते, सही रास्ते से हटा करके गुमराही के रास्ते के ऊपर डालना चाहते हैं। क्योंकि जब ये आपको इस तरह से कहेंगे ना कि कुरान और हदीस को डायरेक्ट स्टडी करो और उनसे जो है वो यानी इल्म हासिल करो, तो आपको ये एक ऐसी चीज करने के लिए कह रहे हैं जो कि आपके लिए बिल्कुल मुमकिन नहीं है। तो आप अगर ये कोशिश करेंगे ना कुरान और हदीस से डायरेक्ट अहकाम हासिल करने की, तो आप हमेशा इसके अंदर नाकाम रहेंगी और होगा क्या कि आप अमल ही नहीं कर सकेंगी। ठीक है, आप यानी अटर कंफ्यूजन का शिकार हो जाएंगी और इससे जो है ना वो यानी आप गुमराही का शिकार हो जाएंगे, आप जो है वो गलत रास्ते के ऊपर चलना शुरू हो जाएंगे। तो अगर कोई बात ऐसी करता है ना, तो इसका मतलब ये है कि या तो उसको हकीकत हाल का बिल्कुल पता नहीं है, या ये कि वो बदनीयत है असल में। ठीक है, तो इस वजह से इस तरह की जो बातें होती हैं उनसे मरूब नहीं हो जाना चाहिए कि हाँ सही तो कह रहे हैं, ये जो दीन है ये तो अल्लाह का दीन है और ये तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है, तो इमाम अबू हनीफा कहाँ से बीच में आ गए। ठीक है ना, ये इन बातों से बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। सही है, सीधी सी बात है कि ये इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का दीन नहीं है, लेकिन इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने इस और उनके जैसे और फुकहा ने पूरी जिंदगी लगा करके इस दीन को समझा है और फिर उन्होंने हमारे लिए इसको आसान करके पेश किया है कि आप ऐसे ऐसे अमल किया करें। कि वो अपनी तरफ से कोई बात नहीं कर रहे होते हैं, वो जो बातें भी कर रहे होते हैं वो कुरान और हदीस से ही बता रहे होते हैं हमें। ठीक है, जैसे हर हर दुनिया के शोबे के अंदर ऐसे ही होता है कि जो उस शोबे के एक्सपर्ट्स होते हैं ना वो उसकी तफसीलात बताते हैं, और अवाम उन्नास जो होते हैं आम लोग जो कि उस शोबे के एक्सपर्ट नहीं होते बल्कि किसी और शोबे के एक्सपर्ट होते हैं वो, तो वो जो है वो उस शोबे के एक्सपर्ट से गाइडलाइंस लेकर के वो काम करते हैं। ये चीज बिजनेस में भी चलती है, ये चीज जो है वो हर हर फील्ड के अंदर ये बात चलती है, उसी तरह से दीन में भी यही बात चलती है। खैर, आगे आयत है फमनिब तगा वरा फउलाइका हुमुल आदून। तो इसके अंदर बहुत सारी तफसीलात हैं, पहले जो मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह अलैह ने मारिफुल कुरान के अंदर लिखा है हम उनको पढ़ लेते हैं, और अगर बीच बीच में कुछ तशरीह की जरूरत पेश आई तो वो भी करते रहेंगे। तो फरमाते हैं कि इससे पहली आयत में नफसानी ख्वाहिश और शहवत का जायज मसरफ मनकूहा बीवी या शरी लौंडी बताया गया था। ठीक है, कि शरीयत इस्लामिया ने जो इंसान को हदूद लगाई हैं, जो लिमिटेशंस लगाई हैं, ठीक है, तो उन लिमिटेशन में से एक लिमिटेशन, एक हद ये है कि तुम अपनी जो जो शहवत है, जो डिजायर्स हैं, ठीक है, यहां पर जो बात हो रही है वो सेक्सुअल डिजायर्स की बात हो रही है। ठीक है, तो वो जो डिजायर्स है ना वो सिर्फ और सिर्फ या तो जिससे तुमने निकाह किया है उससे पूरा कर सकते हो, या जो शरी लौंडी, ठीक है, शरी लौंडी क्या चीज होती है? शरी लौंडी उस औरत को कहते हैं कि जो कि किसी जंग के नतीजे में जब मुसलमान काफिरों के ऊपर फतह पाते हैं, ठीक है, जंग होती है मुसलमानों और काफिरों के दरमियान, जिहाद जिसको कहते हैं, तो जब मुसलमानों को फतह हो जाती है ना तो जो काफिर फौज के लोग थे तो वो लोग जो है ना वो कैदी बना लिए जाते थे। ठीक है, तो इन कैदियों का अब करना क्या है? ये जो इतने सारे लोग कैदी बनाए जाते हैं जिनमें के मर्द भी होते हैं और उनकी औरतें भी होती हैं, औरतों को भी कैदी बनाया जाता है क्योंकि औरतें भी जो है ना वो यानी कभी जंग के अंदर इन्वॉल्व भी होती थी, और कभी जो है वो ऐसा भी होता था कि भाई आपने जो किसी इलाके के ऊपर हमला किया है ना तो भाई पूरे के पूरे एरिया को आपने फतह करना है ना, पूरे के पूरे शहर को फतह करना है, तो उस शहर के अंदर तो औरतें बच्चे सभी रहते हैं ना। सही है, देखें जंग की दो दो शक्लें होती है ना, एक शक्ल तो ये होती है कि दुश्मनों का जो मुल्क है वो दूर है और आपका मुल्क जो है वो एक तरफ है। ठीक है, वहां से एक फौज आती है और यहां से आपकी फौज जाती है और मैदान जंग में बस इन दो फौजों के दरमियान मुकाबला होता है, जैसे कि जंगे बदर के अंदर हुआ, जंगे उहद के अंदर हुआ। ठीक है, जंगे उहद जो है वो मदीना मुनव्वरा के अंदर नहीं हुई बल्कि मदीना मुनव्वरा के बाहर हुई, ना वो मक्का मुकरमा के अंदर हुई बल्कि मक्का मुकरमा से भी फौज आई हुई थी, मदीना मुनव्वरा से भी फौज आई थी, और इन दोनों फौजों का मुकाबला जो है वो उहद के मकाम पर हुआ और जंगे बदर में बदर के मकाम पर हुआ। ठीक ठीक है। तो इस फौज के अंदर, इस जंग के अंदर क्या हुआ कि भाई एक फौज जो है ना वो दूसरी फौज के ऊपर गालिब आई, उन्होंने उनको जो है वो काफी नुकसान पहुंचाया, ठीक है। लेकिन ये नहीं हुआ कि जो फौज फतह याब हुई उसने जाकर के उनके शहर पे कब्जा भी कर लिया हो, ऐसा तो नहीं हुआ ना, ठीक है। ना तो जंगे बदर में ऐसा हुआ कि मुसलमान चूंके जीत गए थे तो उन्होंने जाके मक्का मुकरमा पे कब्जा कर लिया, ऐसा हुआ ही नहीं, ठीक है, क्योंकि मक्का मुकरमा पे अटैक करने का भी वक्त नहीं आया था, सही है। उसी तरह जंगे उहद के अंदर भी मुसलमान अल्टीमेटली बहुत सारा नुकसान हुआ था, लेकिन फतह मुसलमानों को ही थी, लेकिन मुसलमान जो है वो फिर मक्का मुकरमा पे जाके कब्जा तो नहीं किया ना। जंगे खंदक में भी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन जब फतह मक्का का वाकया पेश आया तो उस वक्त क्या हुआ कि उस वक्त जो है वो मुसलमान फौजें जो है वो बाकायदा मक्का मुकरमा में दाखिल हुई और पूरे के पूरे शहर पे कब्जा कर लिया, ठीक है, पूरा शहर जो है वो मुसलमानों के हाथ में आ गया। तो जंग की दो सूरतें होती हैं, एक सूरत ये होती है कि बस फौजें जो है वो एक जगह पर मैदान जंग में आकर के लड़े और वहीं पे फैसला हो जाए कि कौन गालिब आया है और कौन मغلوب हो गया है, ठीक है। और दूसरी शक्ल ये होती है कि बाकायदा किसी के शहर के ऊपर कब्जा कर लिया जाए जाकर के, सही है। तो ईदर वे दोनों सूरतों में जंगी कैदी बनते हैं। पहली सूरत में जंगी कैदी कैसे बनते हैं कि जो फौज आई हुई है तो उस फौज के जो यानी जो जो शिकस्त खुर्दा खुर्दा फौज है तो उसके कुछ मर्दों को जो है वो कैदी बना लिया जाए। अगर वहां पर जो कुछ अगर कुछ औरतें फौज के साथ आई हुई थी तो उन औरतों को भी कैदी बना लिया जाए, ठीक है। तो अब ये कैदी जो है वो बहुत ज्यादा नहीं होंगे, ये 50, 60, 100 कुछ इतनी तादाद में कैदी होंगे, उससे ज्यादा नहीं होंगे, ठीक है। तो इन कैदियों को जो है ना वो कभी कभी कत्ल भी कर दिया जाता था, कभी इन कैदियों को जो है वो यानी रैंसम लेकर के, क्या कहते हैं उसको उर्दू में, तावान, तावान की रकम लेकर के इन कैदियों को फिर छोड़ भी दिया जाता था, सही है। ये थोड़ी तादाद में कैदी होते थे, लेकिन कभी ऐसा होता था कि जब पूरे के पूरे शहर के ऊपर कब्जा कर लिया है, ठीक है, तो अब उस शहर के अंदर तो हजारों शायद लाखों लोग भी रहते हो, तो इतने सारे लोग जो हैं इनको आपने कैदी बना लिया, ठीक है ना। अब इनको आप आजाद नहीं छोड़ सकते, क्यों आजाद नहीं छोड़ सकते, इसलिए कि अगर आपने उनको छोड़ दिया ना तो ये लोग जो थे ना उस जमाने में जो फौजें होती थी तो उनकी जो ताकत होती थी वो ताकत किस चीज
यहाँ
वो ताकत जो है तने आप लोग बताएं, उस जमाने
देख
में
लेना।
फौजी कुव्वत होती थी उसको कैसे यानी मेजर किया जाता था, कैसे क्या क्या चीज उनकी ताकत कहलाती थी उस जमाने में और आज के जमाने में, दोनों का अगर आप बताएं कि उस जमाने में जो फौजी ताकत थी वो किस चीज पर डिपेंड करती थी और आज के जमाने में फौजी ताकत किस चीज पर डिपेंड करती है। खवातीन की क्लास है वैसे तो आप लोगों का ये एरिया है नहीं क्योंकि ये मर्दों की जिम्मेदारी हटाने लगाई है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो इतनी समझ होनी चाहिए ना। तो इस सवाल का अगर आप जवाब दें कि क्या फर्क है फौजी ताकत की मेजरमेंट में उस जमाने में और इस जमाने में, क्या फर्क है? उस जमाने की फौजी ताकत कैसे गिनी जाती थी और आज की फौजी ताकत कैसे गिनी जाती है? नहीं पता, किसी को नहीं पता। देन इट वॉज मोर अबाउट द नंबर ऑफ सोल्जर्स। जी बिल्कुल ठीक है, लश्कर में मर्दों की तादाद और घोड़े और तलवारें, बिल्कुल सही जवाब है। तलवार, तीर, हॉर्स, कैमल की तादाद से और फौजियों की तादाद। हाँ, नाउ इट इज मोर अबाउट वेपन्स, ठीक है। उस जमाने में जो है ना वो बंदे गिने जाते थे कि भाई उनकी फौज के अंदर 1,000 बंदे हैं और मुसलमानों की फौज के अंदर 313, तो टोटल नंबर्स जो है ना वो देखे जाते थे और उसके बाद जो है वो तलवारों और घोड़े वगैरह भी देखे जाते थे, ठीक है। यानी नंबर्स जो थे ना लोगों के मर्दों की जो जो यानी सिपाही जो होते थे, इन सिपाहियों की तादाद जो है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट होती थी। देखिए ना, हर हर जंग के अंदर कभी काफिर जो है ना वो 1 लाख की फौज लेकर के आए और मुसलमानों की तादाद जो थी वो सिर्फ 10,000 थी, राइट। कितनी बाजी की जो जंगें हैं उन सब में यही सब कुछ होता है। फिर उसके बाद इतने उनके पास तलवारें थी, हमारे पास इतनी कम तलवारें थी। लेकिन आज के दौर में जो है ना, ये ऐसे नहीं होता, नंबर्स काउंट नहीं किए जाते, ठीक है। आज के दौर में बेशक उनकी फौज में सिपाही जो है वो कम हो, लेकिन अगर उनके पास टेक्नोलॉजी ज्यादा है, उनके पास सोफिस्टिकेटेड वेपन ज्यादा है, यानी एयरक्राफ्ट, ठीक है, ये प्लेन काउंट किए जाते हैं, हेलीकॉप्टर्स काउंट किए जाते हैं, मिसाइल्स काउंट किए जाते हैं, ठीक है। और उसके अलावा जो जो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है, स्पेस जो स्पेस टेक्नोलॉजी है, ये सारी चीजें काउंट की जाती हैं। बेशक वो मुल्क जो है ना साइज में बहुत छोटा मुल्क हो और उसके अंदर रहने वाले इंसानों की तादाद बहुत कम हो, लेकिन उसका जो दुश्मन मुल्क है उसके उसके यानी शहरियों की तादाद बहुत ज्यादा हो, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। जैसे आप देख लें, एक छोटा सा मुल्क है दुनिया के अंदर, वो जो एक खंजर की तरह से बना हुआ है, इसराइल का मुल्क, राइट, कितना छोटा सा मुल्क है, उसके अंदर जो इंसानों की तादाद जितने वहां पर रहते हैं बहुत कम है, वहां पर लाखों की तादाद में बस उस मुल्क के शहरी हैं, ठीक है। लेकिन उसके चारों तरफ जो मुल्क है, मुसलमान मुल्क, राइट, इतने बड़े बड़े मुल्क, राइट, मिस्र कितना बड़ा मुल्क है, और सीरिया कितना बड़ा मुल्क है, इराक कितना बड़ा मुल्क है, सऊदी अरब कितना बड़ा मुल्क है, ठीक है। लेकिन गालिब कौन है? वो छोटा सा मुल्क गालिब है, ठीक है। नंबर्स जो है वो मैटर ही नहीं करते, टेक्नोलॉजी मैटर करती है आज के दौर के अंदर, ठीक है। अभी हम जाहिर ईमानियात की तो बात नहीं कर रहे ना, हम तो प्योर इस तरह की दुनियावी असबाब की बात कर रहे हैं। तो उस जमाने में जो है ना, ये नंबर्स इंपॉर्टेंट होते थे। तो अगर आप जंगी कैदियों को, अब हम वापस आते हैं, क्योंकि हम बात असल में क्या कर रहे हैं, शरी लॉन्डी क्या चीज होती है, ठीक है। तो अगर जंगी कैदियों को आप छोड़ देंगे ना, तो आप क्या कर रहे हैं, आप उनके जो वेपन्स हैं जो कि इंसानों की शक्ल में होते हैं, आप उनको उनके हथियार वापस कर रहे हैं। तो गोया कि आप उनको ये कह रहे हैं कि भाई हम आपको जो है ना वो यानी एनेबल कर रहे हैं कि आप दोबारा हमारे ऊपर हमला करें, आप दोबारा जो है वो हमारे जिंदगी को मुश्किल बनाए, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ना वो ये कि नहीं किया जा सकता था कि आप जो है वो अपने यानी उनके कैदियों को जो है वो जिंदा छोड़ दें। तो इस वजह से ना, या तो आप उनको कत्ल करें, अगर आप उनको कत्ल करेंगे तो एक तो ये कि काफी ज्यादा बेरहमी का भी मामला होगा, क्योंकि उसके अंदर औरतें बच्चे भी हैं, उनको आप कत्ल करेंगे तो इसकी तो इजाजत भी नहीं है, हमारे दीन के अंदर भी इजाजत नहीं है, और वैसे भी एक इंसानी रहम के खिलाफ है ये। और अगर आप कत्ल कर देंगे, दूसरा मसला क्या है कि अगर आप कत्ल कर देंगे तो भाई वो जो इंसान है, इंसानों के पास सलाहियतें होती हैं, उनको अल्लाह ताला ने इल्म दिया होता है, उनको हुनर दिया होता है, कत्ल कर देंगे तो ये सारी सलाहियतें और हुनर जो है ना वो सब का सब जाया हो जाएगा। तो आप ये करें कि या तो आप उनको कैदी बनाएं, अगर आप उनको कैदी बनाएंगे और किसी कैद खाने के अंदर रखेंगे, प्रिजन के अंदर रखेंगे, तो क्या होगा कि आपको उस कैद खाने यानी प्रिजन के इंतजाम भी करने पड़ेंगे भाई, उन सारे कैदियों को आपको खाना भी खिलाना पड़ेगा, क्योंकि आप उनको मारना तो नहीं चाहते, क्या आपने कैद खाने में रखा फिर खाना नहीं दिया तो भूखे मर जाएंगे वो लोग। तो खाना भी देना होगा, पानी भी देना होगा, कपड़े वगैरह का भी इंतजाम करना होगा, उसके अलावा जो एक इंसान की जरूरियात हैं, बेशक वो कैदी है लेकिन उसकी जरूरियात है ना, ठीक है, ड्रेनेज का भी इंतजाम करना पड़ेगा, सीवरेज का भी इंतजाम करना पड़ेगा, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा खर्चा लेती हैं, ठीक है। तो कैद खाने के अंदर बंद कर देने का मतलब ये है कि इतनी बड़ी तादाद में इंसानों की आपको इन सारी जरूरियात को पूरा करना पड़ेगा, ये जो है ना आपके मुल्क के खजाने के ऊपर बहुत भारी पड़ेगा, बहुत बड़ा एक्सपेंडिचर होगा, ठीक है। तो इस वजह से ना ये भी कोई अच्छा हल नहीं था। तो फिर जो आखिरी हल था ना, वो ये था जो कि उस जमाने में राइज हल था, ये सिर्फ मुसलमानों ने नहीं किया, ये तो मुसलमान यानी इस्लाम से पहले ये तरीका राइज था। वो ये तरीका था कि उनके मर्दों को गुलाम बना लिया जाता था और उनकी औरतों को जो है वो लौंडी बना लिया जाता था, बांदी बना लिया जाता था, अरबी में उसके लिए अमतुन का लफ्ज इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो अब वो लौंडी और बांदी जो बनाया जाता था, तो क्या मतलब लौंडी बांदी बनाया, यानी कैद खाने में कैद नहीं किया, बल्कि इन लौंडियों को और गुलामों को जो है ना वो फातेह कौम के लोगों में बांट दिया जाता था, ठीक है। हर सिपाही या हर शहरी को एक गुलाम दे दिया, एक बांदी दे दी, اس طریقے سے ڈسٹریبیوشن ہو جاتی تھی ان کی, ٹھیک ہے. اب وہ جو غلام اور باندی ہوتے تھے نا, وہ ان کے گھر کے خادم کے طور پر ان کے ساتھ رہنا شروع ہو جاتے تھے. اور ایک تو یہ کہ ان کی جو صلاحیتیں ہوتی تھیں, جو ان کو ہنر آتا تھا, جو ان کا علم تھا, یہ علم اور ہنر جو ہے نا پھر ان کے مالکوں کے فائدے میں استعمال ہونا شروع ہو جاتا تھا, ٹھیک ہے. تو اب یہ جو آپ کے گھر کے اندر انہوں نے غلام اور باندی دے دیے ہیں, ٹھیک ہے, تو ان غلام اور باندیوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے, یہ سلوک اسلام سے پہلے جو ہے بہت زیادہ برا سلوک ہوتا تھا, ٹھیک ہے نا. وہ ان کے ساتھ بہت ظلم والا معاملہ کرتے تھے, بہت غیر انسانی قسم کا رویہ رکھتے تھے. جیسے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ تو سارے مسلمانوں کو پتا ہے کہ وہ بھی ایک غلام تھے, اور ان کا جو آقا تھا وہ ان کو کیسی کیسی اذیتیں دیتا تھا, کتنی بری طریقے سے رکھتا تھا, ٹھیک ہے. جب اسلام آ گیا نا, تو اسلام آنے کے بعد فرق یہ ہو گیا کہ ان غلاموں کے بہت زیادہ حقوق اللہ تعالیٰ نے بتائے, ٹھیک ہے, قرآن کے اندر بھی اور حدیثوں کے ذریعے سے بھی بہت زیادہ حقوق بتائے کہ یہ بھی انسان ہیں, اور ان کے ساتھ تم غیر انسانی رویہ ہرگز نہیں رکھ سکتے. ان کے ساتھ بہت اچھا تم نے معاملہ کرنا ہے. جو خود کھاؤ ان کو کھلاؤ, جو خود پیو ان کو پلاؤ, جو خود پہنو ان کو پہناؤ, ٹھیک ہے. اور ان کو مار نہیں سکتے تم, ان کو مارو گے تو تمہیں اس کی سزا ملے گی. اور ان کو جو ہے وہ اچھے سے جو ہے نا ان کی تعلیم تربیت کا بھی انتظام کرو, ٹھیک ہے. ان کو اپنے گھر کے فرد کی طریقے سے رکھو. تو اس طریقے سے جب مسلمانوں نے غلاموں اور باندیوں کے ساتھ ٹریٹمنٹ شروع کر دینا, تو اس کا مزید فائدہ یہ ہوا کہ غلام اور باندی جو ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ جو ہے وہ مسلمان ہونا شروع ہو گئے. مسلمانوں کے اخلاق سے متاثر ہو کر کے یہ غلام اور باندیاں جو ہے وہ مسلمان ہونی شروع ہو گئیں, اور انہوں نے جو ہے وہ دین کا علم حاصل کرنا شروع کر دیا. اور ایک ہی جنریشن کے اندر اندر یہ تبدیلی آئی کہ یہ غلام اور باندیاں جو تھیں, یہ ان میں سے کچھ ایسے تھے جو کہ علم اور عبادت کے اندر ایون جو پہلے سے مسلمان تھے ان سے بھی آگے بڑھ گئے, ان سے بھی آگے بڑھ گئے, ٹھیک ہے. تو یہ تو دین اسلام کا اصل میں یعنی غلام اور باندیوں کا طریقہ ہے. تو یہ تو انسانوں کے لیے بہت ہی زیادہ مفید طریقہ ہے. اس سے یعنی اس کی جو ہے نا وہ برائی اس کو سمجھنا جو ہے اس کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. ہاں البتہ یہ ہے کہ وہ بہرحال آپ کے یعنی اونرشپ میں تھے, ٹھیک ہے. تو اس کا بھی حل یعنی ان کو آزاد کرنے کا بھی دین نے بہت زیادہ جو ہے وہ سلسلہ رکھا کہ اگر آپ سے روزہ آپ یعنی آپ نے فرض روزہ جو ہے وہ جان بوجھ کر کے توڑ دیا, تو اب اس کا کفارہ کیا ہے؟ غلام آزاد کرنا یا باندی آزاد کرنا, ٹھیک ہے, اس کو آزاد کر دو. اسی طریقے سے بہت سارے ایسے گناہ ہیں کہ جن کا کفارہ سب سے پہلے کیا رکھا قرآن نے, سب سے پہلے کفارہ یہ ہے کہ غلام آزاد کرو. اگر تمہارے پاس غلام ہے ہی نہیں تب جو ہے تم 60 روزے رکھ سکتے ہو, ٹھیک ہے, لیکن اگر غلام ہے نا تو تمہیں غلام آزاد کرنا پڑے گا. یہ نہیں کر سکتے کہ غلام آزاد نہیں کروں گا میں, وہ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے غلام, یا وہ غلام جو ہے وہ میری ضرورت ہے, میں اس کو آزاد نہیں کروں گا بلکہ میں 60 روزے رکھ لوں گا. نہیں, 60 روزے رکھنے سے آپ کا کفارہ ادا ہی نہیں ہوگا, آپ کو غلام آزاد کرنا پڑے گا, ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے پھر جو سلسلہ چلا نا کہ بھئی کوئی غلطی ہو گئی, کوئی ایسا معاملہ ہو گیا, غلام آزاد کرو, غلام آزاد کرو, تو پھر مسلمانوں نے بہت بڑی تعداد میں وہ جو غلام تھے, جو باندیاں تھیں, ان کو بھی آزاد کرنا شروع کر دیا, ٹھیک ہے. تو وہ پھر بالکل نارمل شہریوں کی طرح سے بھی پھر رہنا شروع ہو گئے, کیونکہ وہ آزاد ہو جاتے تھے اور وہ پھر اسلامی معاشرے کا حصہ بن کر کے رہنا شروع ہو جاتے تھے, ٹھیک ہے. تو بہت بہترین یہ نظام تھا, اس کی وجہ سے جو ہر قسم کے فائدے ہوتے تھے. لونڈی صرف کنواری عورت بنتی تھی یا کسی غلام کی بیوی بھی بن سکتی تھی؟ یہ جو غلام کی بیوی ہوتی تھی نا, وہ تو لونڈی نہیں بنتی تھی. یعنی یہ ہے کہ بھی غلام, اس کا شوہر جو ہے وہ موجود ہے وہاں پر, تو اس کو تو لونڈی نہیں بنایا جا سکتا تھا, ٹھیک ہے. لیکن بہت ساری عورتیں ایسی ہوتی تھی نا کہ جن کے یا تو شوہر جو ہے وہ جنگ کے اندر مار دیے گئے ہیں, یا ان کے شوہر جو ہیں وہ یعنی مسلمانوں کی قید میں نہیں آئے ہیں بلکہ وہ وہیں پر ہیں, بھاگ گئے ہیں وہ, ٹھیک ہے. تو ایسی جو عورتیں ہوتی تھیں ان کو جو ہے وہ لونڈی بنایا جاتا تھا, ٹھیک ہے. یہ نہیں کہ کوئی غلام وہیں پہ موجود ہے, اس کی یہ بیوی ہے, اور اس کو جو ہے وہ کسی نے اس سے چھین کر کے جو ہے لونڈی بنا لیا. یہ بہت زیادہ اس کے اندر تفصیلات ہیں کہ لونڈی کے کیا حقوق ہوتے ہیں, غلام کے کیا حقوق ہوتے ہیں, غلام سے پردہ ہے کہ نہیں ہے, لونڈی سے پردہ ہے کہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ
फिका की किताबों के अंदर हम पढ़ते हैं। बहरहाल जो लौंडी अगर किसी मर्द की लौंडी होती है, किसी मर्द को जो है वो दी गई है कि भाई आपकी ये ओनरशिप के अंदर है, आपने इसका ख्याल रखना है, तो वो जो मर्द को जो लौंडी दी गई होती थी ना, तो वो लौंडी जो है वो फिर उसकी बीवी की तरह से होती थी, अगरचे के उसके यानी राइट्स जो हैं वो बीवी के मुकाबले में आधे होते थे। ठीक है, तो उसके साथ भी बीवी जैसा मामला करना जो है वो शरीयत ने जायज करार दिया था। गुलाम और मेड में क्या फर्क है? गुलाम और मेड में या गुलाम और नौकर में? इसलिए कि लौंडी और मेड आप पूछना चाह रही हैं क्या, गुलाम और मेड पूछना चाह रही हैं? ये तो दो अलग अलग चीजें होंगी ना, मेल और फीमेल का फर्क है यहाँ पर। तो गुलाम और नौकर में फर्क, ठीक है, हाँ ये फर्क आपको बता दें, बहुत सिंपल सा फर्क है कि गुलाम की कोई तनख्वाह नहीं होती कि आप उसके सर्विसेज के बदले में उसको कुछ पेमेंट करेंगे, उसकी कोई पेमेंट नहीं होती। ठीक है, उसकी यानी ये नहीं होता कि आप उसको कुछ पैसे देंगे तो वो उस पैसे का मालिक बन जाएगा, नहीं, आपने उसको खाना खिलाना है, जो उसकी खाने की, जैसे कि जैसा आप खाएं वैसा उसको खिलाएं, ठीक है ना, जैसे अपने कपड़े इस्तेमाल करें वैसे उसको कपड़े पहनाएं, ठीक है, लेकिन उसको आप कोई रकम दे करके उसकी सर्विस खरीदते नहीं है, क्योंकि वो आपकी प्रॉपर्टी है, लिटरली वो जो इंसान है ना वो आपकी प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, अच्छे सलूक करना ये शरीयत की तरफ से आया है ना, ठीक है, आप उसे बुरा सलूक नहीं कर सकते, लेकिन ये नहीं है कि आप उसको पैसे देंगे तो वो उसकी मिल्कियत बन जाएगा, वो उसकी मिल्कियत नहीं बनेगा। जबकि इसके बरक्स नौकर का क्या मामला होता है, ये नौकर जो होता है ना ये एक आजाद शहरी होता है, ये गुलाम नहीं होता, बल्कि एक आजाद शहरी है जो कि आपके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करता है कि साहब मैं आपके पास आकर के फलाना काम करूंगा, ठीक है, आपके घर के अंदर झाड़ू दूंगा, पोछा लगाऊंगा, या आपके जो है वो खाना पका दिया करूंगा, या मैं आपके जो है वो लॉन को जो है वो मो कर दिया करूंगा, ठीक है, या बाजार से आपके लिए सौदा ला दिया करूंगा, इसके बदले में मेरी ये तनख्वाह होगी, ठीक है ना। अब जब वो ये काम करता है तो आप उसको महीने के आखिर में जो तनख्वाह देती है ना, ये तनख्वाह इसकी मिल्कियत होती है, वो तनख्वाह आपकी अब नहीं है, आपने उसको दे दिया, वो उसकी मिल्कियत हो गई, ठीक है ना, वो एक आजाद शहरी की ये तारीफ होती है। और गुलाम जो है ना ये आजाद शहरी नहीं होता भाई, ये तो एक सिस्टम में बिल्कुल डिफरेंट है ना, अगर उसको आजाद शहरी के तौर पर आप ट्रीट करेंगे तो फिर तो वो आपकी तो फिर यानी आपकी जो जो कंट्रोल है उससे तो बाहर चला गया, और फिर वो जो मैदान जंग वाली सारी बातें आपको समझाई हैं तो वो तो यानी मामला ही खराब हो गया, क्योंकि अब तो वो जो चाहे करे, ठीक है। तो इस वजह से ना गुलाम और नौकर के दरमियान फर्क होता है। उसी तरीके से आपने पूछा अगरचे ये नहीं है, लेकिन ये भी आपको बताते चले कि जो घरों के अंदर नौकरानियां होती हैं ना, ये नौकरानियां ये बांदी नहीं होती हैं, ठीक है, ये मेड्स, चाहे उसको अंग्रेजी में आप मेड बोलें, चाहे आप उर्दू में आप उसको मासी बोलें या आप नौकरानी बोलें, ये बांदी नहीं होती है, ठीक है, बांदी का पर्दा नहीं होता। मर्द जो है ना जिसकी वो बांदी है, तो उसके साथ मर्द का तो मामला उसके साथ बीवी वाला है, ठीक है, तो मर्द को उसको साथ पर्दा को थोड़ी करना है, बांदी ने मर्द के साथ पर्दा को थोड़ी करना है, जैसे बीवी ने शौहर के साथ पर्दा नहीं करना होता, उसी तरह बांदी ने शौहर के साथ अपने आका के साथ पर्दा नहीं करना होता, ठीक है। लेकिन जो नौकरानी है, मासी है, मेड है, भाई ये तो एक आजाद औरत है, इस आजाद औरत के साथ पर्दा फर्ज है, ना तो उस घर का मर्द या उस घर के लड़के जो बालिग लड़के हैं वो उस मेड या मासी या नौकरानी को यानी उसके साथ आप बेपर्दगी यानी देख भी नहीं सकते उसको, ठीक है, उसके साथ बातचीत करना देखना जरूरत अलग चीज होती है, ठीक है, जिसकी निगाहों को नीचे रख करके आप किसी से जरूरतन बात कर सकते हैं, ठीक है, खुसूसन घर की नौकरानी है उसके साथ जरूरतन बात करनी पड़ती है, लेकिन निगाहों की हिफाजत के साथ, उसके साथ आप फ्री नहीं हो सकते, उसको जो है वो अपने घर की कोई महरम औरत के तौर पर ट्रीट नहीं कर सकते, वो महरम नहीं है, वो गैर महरम है, ठीक है, तो उस मासी के ऊपर भी फर्ज है पर्दा करना घर के मर्दों से, ठीक है, अगर नहीं करेगी तो वो गुनाहगार होगी, और अगर घर के मर्द जो है वो मासी को जो है अपनी महरम औरत की तरह से ट्रीट करेंगे या बांदी की तरह से ट्रीट करना शुरू हो जाएंगे, जैसे कि हमने सुना है कि कुछ इलाकों में मेड्स को जो है वो बांदी की तरह ट्रीट किया जाता है, हराम है ये बिल्कुल,
और इसके बदले में अल्लाह ताला की तरफ से सख्त जो है ना वो सजा के वादे हैं, और ऐसे लोग जो हैं फिर सजा से अल्लाह ताला की नहीं बच सकते, बेशक उनको दुनिया में कोई सजा ना मिले, ठीक है, क्योंकि वो तो मेड है, मेड क्या कर सकती है, वो तो बेचारी है, मासूम, वो तो मजलूम है, नहीं, मेड आपको सजा नहीं दे सकती, अल्लाह ताला तो है ना, अल्लाह ताला को तो सब कुछ पता है ना, ठीक है। तो इसी तरीके जिस तरह से गुलाम और नौकर के दरमियान फर्क है ना, उसी तरीके से बांदी और नौकरानी के दरमियान भी इतना बड़ा फर्क है, ठीक है। तो यहाँ पे जो लिखा कि इससे पहली आयत में नफसानी ख्वाहिश और शहवत का जायज मसरफ मनकूहा बीवी या शरी लॉन्डी बताया गया था, इस आयत में इन दो सूरतों के सिवा, इन दोनों के अलावा शहवत रानी की हर सूरत को ममनू और नाजायज करार दिया है, ठीक है ना, यानी इसके अलावा भी लोगों ने सूरतें बनाई हुई थी, अल्लाह ताला ने उन सबको नाजायज, ठीक है ना। तो इस आयत से, यानी ये जो तीन आयतें हैं इस टॉपिक के ऊपर, इन आयतों से ये चीज यानी हमें पता लगती है, इसमें निकाह की वो सूरतें भी दाखिल हैं जो शरअन हलाल नहीं है, जैसे उन औरतों से निकाह जिनसे शरअन निकाह हराम है, ठीक है, जैसे जो महरम औरतें होती हैं उनके साथ निकाह हराम है, राइट। वो तो वैसे भी आम बंदा तो सोच भी नहीं सकता कि किसी महरम औरत से निकाह कर ले, लेकिन कुछ ऐसी भी औरतें होती हैं जो महरम भी नहीं होती लेकिन निकाह भी नाजायज है, मसलन कौन, आपको इतना तो इल्म होना चाहिए, यानी ऐसी भी कोई औरत हो सकती है कि जो आपकी महरम यानी मर्द की महरम नहीं है लेकिन फिर भी निकाह नहीं कर सकते, बिल्कुल सही फरमाया, बीवी की बहन वो गैर महरम है, उसके साथ पर्दा फर्ज है, ठीक है, लेकिन उसके साथ निकाह उस वक्त तक नहीं कर सकते जब तक बीवी जिंदा है या बीवी के साथ निकाह का ताल्लुक है, उसकी बहन के साथ निकाह का ताल्लुक है। अगर उसकी बहन को आपने तलाक दे दी यानी मर्द ने तलाक दे दी या उसका इंतकाल हो गया, अब उसकी बहन से शादी कर सकता है, वरना नहीं कर सकता, ठीक है, बीवी की बहन जब तक बीवी हयात है या बीवी निकाह में है, ठीक है, अगर उसने तलाक दे दी तो फिर उसके बाद जो है वो बीवी की बहन से भी शादी कर सकता है। तो ये यानी ये वो बात हो गई कि उन औरतों से निकाह जिनसे शरण निकाह हराम है, इसी तरह मुता जो शरण निकाह नहीं है, मुता का मतलब, एक्सक्यूज मी, मुता का मतलब क्या होता है कि ये ना इस्लाम के इब्तदाई दौर के अंदर सिर्फ और इस्लाम से पहले ये एक सूरत उस मुआशरे के अंदर मौजूद थी कि किसी औरत के साथ एक लिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट किया जाता था, लिमिटेड टाइम के लिए, ठीक है, कि भाई मैं आपको, मर्द ये कहता था कि जी मैं आपको इतने पैसे दूंगा और आप जो है ना मेरे साथ 1 साल के लिए बीवी बन जाए, मेरे लिए 1 साल के लिए बीवी बन जाए, ठीक है। तो ये 1 साल का जो एक मियाद है ना, चाहे 1 साल बोले या 1 महीना बोले या 1 हफ्ता बोले, ये मियाद कुछ भी हो सकती है, लेकिन मियाद मुकर्रर कर लेना, ये जो है ये निकाह नहीं होता था, ये मुता होता था, ठीक है, ये मुता जो है वो हराम कर दिया गया था बाद में, सही है। तो लेकिन कुछ लोग खुसूसन शियाओं के हमने सुना है कि मुता जो है वो आज भी जायज है, तो इस वजह से ना ये डिस्कशन जो है वो आज भी चलती है कि भाई क्या मुता हलाल है कि क्या मुता हराम है। तो अहले सुन्ना वल जमात इस बात में मुत्तफिक है सारे के सारे कि मुता जो है ना ये हराम है, बेशक आप काजी के सामने बैठ करके और बाकायदा जो है वो मेहर मुकरर करें और दो गवाहों की मौजूदगी के अंदर इकरार यानी इजाब कबूल कर लें, लेकिन अगर आपने कोई भी मियाद मुकरर कर ली कि ये जो हम कर रहे हैं ना ये इतने अरसे तक ये वैलिड रहेगा और उसके बाद इनवैलिड हो जाएगा, तो ये निकाह नहीं रहता बल्कि ये मुता बन जाता है, ठीक है। तो हजरत यहाँ पर यही लिख रहे हैं कि ये मुता भी जो है ना ये हराम है, ये भी शरण निकाह में दाखिल नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों सूरतें समझ में आ गई, तो आगे चलते हैं कि अब ये एक और बड़ा ही यानी खतरनाक टॉपिक है, जाहिर है, क्योंकि मैं खतरनाक इस वजह से नहीं कि अभी यानी डिस्कशन ऐसी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये इसमें बहुत लोग मुब्तला हैं, इस वजह से ये खतरनाक है। अपने हाथ से शहवत पूरा करना ये भी हराम है, ठीक है। अब इसको इंग्लिश में जो है ना वो मैस्टरबेशन कहते हैं और उर्दू में जो है ना इसको यानी जिना बिल यद कहते हैं, ठीक है, जिना बिल यद, यद मीनिंग हाथ, ठीक है। तो फरमाते हैं कि अक्सर फुकहा रहिमहुमुल्लाह ने इस्तिमना बिलियत या इस्तिमता बिलियत भी इसको कहते हैं और इस्तिमना बिलियत जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ये भी कहते होंगे, यानी अपने हाथ से जो है वो शहवत पूरी करना, ठीक है, इसको भी इसके उमूम में दाखिल करार देकर हराम करार दिया। यानी ये जो आयत है ना, ये आयत जो है वो बड़ी जनरल आयत है कि इसके अंदर निकाह के अलावा सारी सूरतों को हराम करार दिया, तो इस वजह से फुकहा ने इस आयत की तफसीर के अंदर इस बात का भी जिक्र किया है, ठीक है, कि इस्तिमता बिलियत जो है ना तो ये भी हराम है, सही है, चाहे कोई मर्द करे इस तरह का काम, चाहे कोई औरत करे इस तरह का काम, ठीक है, इसलिए कि बदकिस्मती से इंसानियत जो है वो इतनी ज्यादा जो है वो यानी शैतान के रास्ते पे चल पड़ी है कि कोई भी इसे महफूज नहीं, ये नहीं कि जी सिर्फ मर्द बल्कि औरतें भी जो है वो इस किस्म के यानी बहुत ही ज्यादा गंदे गुनाहों के अंदर औरतें भी जो है वो मुलव्वस होती हैं। इब्ने जुरैज, लेकिन ये बिल्कुल नई चीज नहीं है, ये बहुत पुराने जमाने से चली आ रही है, ये कोई ऐसा नहीं है कि आज के दौर में जब से टीवी इजाद हुआ है, जब से जो है वो इतनी बेहयाई फैल गई है तब से ये शुरू है, नहीं, शुरू तो ये बहुत पहले से हुआ हुआ है, ठीक है, आज के दौर के अंदर ये चीजें बहुत कसरत के साथ हो गई हैं, पहले कसरत के साथ नहीं होती थी, ये फर्क है खाली असल में, ठीक है, गुनाहों की सूरतें पहले भी मौजूद थी जैसी आज मौजूद हैं, लेकिन कसरत का फर्क है, पहले कसरत नहीं होती थी, अभी जो है वो बहुत ज्यादा कसरत हो चुकी है। मैंने सुना इब्ने जुरैज रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने हजरत अता गालमनी अता बिन अबी रबाह रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े ताबी गुजरे, तो कहते हैं कि मैंने हजरत अता रहमतुल्लाह अलैह से इसके मुतालिक पूछा, यानी इस्तिमता बिलयद के बारे में पूछा, तो उन्होंने फरमाया कि ये मकरूह है, ठीक है, यानी मकरू का मतलब क्या है कि इन्होंने फरमाया कि ये हराम के दर्जे में बुरा नहीं है लेकिन ये मकरू के दर्जे में तो है, ठीक है, यानी कराहियत है इस फेल के साथ। मैंने सुना है कि महशर में कुछ ऐसे लोग आएंगे कि जिनके हाथ हामिला होंगे, मेरा गुमान ये है कि ये वही लोग हैं जो अपने हाथ से शहवत पूरी करते हैं, ठीक है, यानी बीवी से शहवत पूरी करने के बजाय अपने हाथ से शहवत पूरी करते हैं, तो इनको भी कयामत के दिन जो है ना वो सजा दी जाएगी, और किस शक्ल में दी जाएगी कि गोया के हाथ उनके इस तरह के होंगे जैसे कि एक औरत जो प्रेग्नेंट होती है तो उसकी शक्ल होती है, उस तरह से इनके हाथों की शक्ल होगी। हजरत सईद बिन जुबैर रहमतुल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने एक ऐसी कौम पर अजाब नाजिल फरमाया जो अपने हाथों से अपनी शर्मगाहों से खेलते हैं, ठीक है ना, यानी कौम को भी अल्लाह ताला ने इस रिपोर्ट के मुताबिक इस गुनाह की वजह से तबाह किया। एक हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मलऊनुन मन नकाहा यदहु, यानी जो अपने हाथ से निकाह करे वो मलऊन है। भाई हाथ से निकाह कौन, के किस किस्म का निकाह, कोई काजी के साथ बैठकर कोई अपने हाथ से निकाह करता है, नहीं, मकसद मतलब इसका क्या है, यही के जिसको के इस्तिमता बिलयद या मास्टरबेशन कहते हैं। तो अगरचे के इस हदीस की सनद जो है वो ज़ईफ़ है ना, तो इसी वजह से चूंकि ये जो हदीस है, अगर इसकी सनद यानी जिन लोगों ने इस हदीस को रिवायत किया है, नबी अलैहिस्सलाम से रिवायत किया और उसके आगे जिन लोगों ने इस हदीस को आगे नरेट किया, उनमें कहीं ना कहीं कोई ऐसा कोई शख्स होगा कि जिसके बारे में कुछ शको शुबा हो, ठीक है, कि भाई ये जो है ना कभी कभी जो है ना वो कुछ मजहूल बात भी कर दिया करता है, या किसी और किस्म के रीजंस हो सकते हैं कि जिसकी वजह से फुकहा जो हैं या मुहद्दिसीन जो हैं वो उस हदीस को ज़ईफ़ करार देते हैं, ठीक है, तो ये जो हदीस है ना ये उन ज़ईफ़ हदीसों में से है जिन ठीक है जिन जिनके सनद के अंदर कुछ ना कुछ झोल होता है, तो इस वजह से क्योंकि ये एक ज़ईफ़ हदीस है इस वजह से इस गुनाह को हराम करार देना जो है ना वो फुकाहा ने ऐसे हराम करार नहीं दिया है, ठीक है, लेकिन इसकी कराहियतें इतनी ज्यादा हैं, इसकी मुजर्रतें इतनी ज्यादा हैं कि इसको स्ट्रॉन्गली डिस्करेज किया जाता है, ठीक है, बहुत इसकी वजह से जो है ना वो इंसानियत को जो है वो नुकसान होता है, ठीक है, तो ये एक ऐसा गुनाह है कि अनफॉर्चुनेटली ये चीज जो है वो आज के दौर में बहुत ज्यादा कॉमन क्यों हो गई है, बहुत ज्यादा नौजवान खुसूसन मर्द जो लड़के होते हैं वो इसके अंदर बहुत ज्यादा मुबतला होते हैं। ठीक है, उसकी वजह क्या होती है, क्योंकि जब एक इंसान बालिग होता है ना, तो बालिग होने की वजह से उसके जिस्म के अंदर और उसके जहन के अंदर बहुत तब्दीलियां आती हैं। ठीक है, जिस्म जो होता है वो मेच्योर हो जाता है कि वो यानी उस वो जो है वो बाकायदा निकाह करने के काबिल हो जाता है इंसान का जिस्म। ठीक है, उसी तरीके से उसकी जहन में भी बहुत सारी तब्दीलियां आती हैं। ठीक है, वो जहन की तब्दीलियां कैसे होती हैं कि जो हमारे यानी जो हमारे जो इमोशंस होते हैं, फीलिंग्स होती है ना, ये सारी की सारी जिस्मानी तब्दीली से कंट्रोल होती हैं। ठीक है, बाकायदा जिस्म के अंदर केमिकल्स होते हैं, अल्लाह ताला ने केमिकल सिस्टम रखा है जिसको कि हॉर्मोन्स भी कहते हैं। ठीक है, ये केमिकल्स जो है ना, ये एज के साथ साथ रिलीज होना शुरू होते हैं। ठीक है, ग्लैंड से, ये हमारे अंदर ग्लैंड्स हैं, छोटे छोटे क्या कहते हैं उनको उर्दू में, गुदुए कहते हैं, या बहरहाल इंग्लिश में उनको ग्लैंड्स कहते हैं। ये ग्लैंड जो है ना, ये इन केमिकल्स को सिक्रीट करते हैं जैसे जैसे इंसान के अंदर यानी इंसान का जिस्म बढ़ता है। ठीक है, ये सिक्रीशंस जो होती हैं, एक तो ये कि उम्र के बढ़ने की वजह से ये केमिकल्स की सिक्रीशन शुरू होती है। इन सिक्रीशंस के शुरू होने से इंसान की सोच पर असर पड़ना शुरू होता है, सोच भी बदलना शुरू होती है। ठीक है, दूसरी रीजन जिनकी वजह से ये सिक्रीशन शुरू होती हैं, वो होते हैं बैरूनी असरात, बाहर का माहौल, बाहर जो चीजें यानी जो चीजें मौजूद हैं उनको जब इंसान देखता है, वुदूद, जज़ाकुमुल्लाह, जब वो बच्चा बाहर की चीजों को देखता है ना, जैसे कि बेलिबास औरतों की तस्वीरें देख रहा है, या जो है वो गाना सुन रहा है। नबी अलैहिस्सलाम की एक हदीस आपने भी पढ़ी होगी, इसके अंदर भी मौजूद है, ज़्यादा तालिबीन के अंदर भी मौजूद है, कि जब इंसान गाना सुनता है ना, तो गाना दिल के अंदर जिना के जज्बात को ऐसे उगाता है, ऐसे बढ़ाता है, जैसे बारिश जब जमीन पर पड़ती है तो जमीन में से पौधे उगते हैं। उसी तरीके से गाना यानी जो मौसीकी की आवाज है और गाने के जो अल्फाज होते हैं, सुरीले किस्म के अल्फाज, जब वो इंसान के कानों में पड़ते हैं तो उसके अंदर जज्बात भड़कते हैं। भाई कैसे जज्बात भड़कते हैं? साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन उसकी ये है कि ये जो एक्सटर्नल चीजें इंसान के अंदर एंटर होती है ना कानों के जरिए से, ये जाकर के उन उन हुदूद को, उन ग्लैंड्स को जो है ये मोटिवेट करती हैं। ठीक है, और ये ग्लैंड जो है ना, फिर उन केमिकल्स को रिलीज करना शुरू होते हैं, जो केमिकल्स जो है वो आपके ब्रेन के ऊपर असर डालते हैं। इस वजह से जो आपका ब्रेन है ना, उसके अंदर जो होती हैं वो सर्टेन जो चीजें होती हैं ना, जो ब्रेन के जो एरियाज होते हैं, वो एरियाज जो होते हैं ना, वो ट्रिगर होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो जिस तरह कान से एंटर होने वाला गाना ये अंदर जाकर के उन ग्लैंड्स को मोटिवेट करता है, उसी तरीके से आंखों के जरिए से जो जो शक्लें, जो तस्वीरें एंटर होती हैं ना, वो भी जाकर के दिमाग के ऊपर असर करती हैं, ग्लैंड्स के अंदर से सिक्रीशंस होती हैं, वो जाकर के इंसान की सोच को जो है ना वो यानी मुतहरक कर देती हैं। ठीक है, ऐसे जो है वो इंसान की शहवत उभरती है। तो बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है, तो जितना गंदा माहौल होगा, जितनी उसके अंदर गंदी शक्लें होंगी, तस्वीरें होंगी, गंदी बातें वो पढ़ेगा, किताबों के अंदर बच्चे पढ़ते हैं, एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं स्कूलों के अंदर, कि जो के यानी जो यानी क्या कहते हैं उसको, यानी मैगजीन्स वगैरह जो होते हैं, ठीक है, पोर्नोग्राफिक, पोर्नोग्राफी होती है, वो मैगजीन्स के अंदर उसकी तस्वीरें भी होती हैं, उसके अंदर बातें भी ऐसी लिखी होती हैं, जब बच्चे एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं ना स्कूलों के अंदर, तो ये चीजें पढ़ने से जो है ना, इनकी मेच्योरिटी जो होती है ना, ये बहुत तेजी से ट्रिगर होना शुरू हो जाती है। अगर उस बच्चे ने नॉर्मल हालात में 14 साल में जाके बालिग होना था, तो इन तस्वीरों और इन गानों और इन शक्लों की वजह से और इन बातों को जो वो पढ़ते हैं, इनकी वजह से उसकी जो ये मेच्योरिटी है ना, ये मेच्योरिटी 12 साल में हो जाएगी, या हो सकता है 8 साल में हो जाए। आज के दौर में ये लेटेस्ट रिसर्च ये है कि वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर तो 6 साल की उम्र के बच्चे बालिग हो जाते हैं, 6 साल की उम्र, कैन यू इमेजिन दैट, 6 साल की उम्र में बालिग, भाई कैसे बालिग हो जाते हैं 6 साल की उम्र में? इसी वजह से कि इतना ज्यादा उनको इसके अंदर डाला जाता है, इस किस्म के माहौल के अंदर, कि उनकी ये जो ग्लैंड्स की सिक्रेशंस होती हैं वो बहुत पहले से शुरू हो जाती हैं। ठीक है, तो अब हमारे बच्चे भी जो है वो भी इन चीजों से एक्सपोज है ना, तो इस वजह से ये जो एक प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को जो है वो बहुत सीरियसली हैंडल करना होता है, बहुत ज्यादा तवज्जो चाहिए होती है कि अपने बच्चों को जो है वो इन चीजों से कैसे बचाया जाए। ठीक है, तो जब तक आप इन चीजों से नहीं बचाएंगे ना, तो फिर क्या होगा कि वो फिर इन चीजों को पढ़ते रहेंगे, देखते रहेंगे, सुनते रहेंगे, चाहे वो जहां भी सुने, चाहे स्कूल में जाकर के सुने, चाहे जो है वो अपने कजन्स के साथ जब कभी दावत में, आप लोग तो माशाल्लाह खवातीन तो बातें करना शुरू हो जाती हैं, और जो बच्चियां होती हैं और जो बच्चे होते हैं वो आपस में मिलकर के बैठ जाते हैं, आप समझ रही हैं कि आपने अपने बच्चे को बड़ी अच्छी तरबियत करी है, लेकिन वहां जाकर के वो जिन बच्चों के साथ बैठता है या बैठती है, तो वहां पर तो न जाने किस किस किस्म की बातें वो लोग कर रहे होते हैं, तो ये बातें वो सुनते हैं, फिर वो इंटरनेट का उनको कहीं ना कहीं से एक्सेस मिल जाता है, फोन के ऊपर आप दे देते हैं फोन उठा करके बच्चों को, फोन पे जाकर के वो गूगल पे एक सर्च मारते हैं और दुनिया जहां की जो गलाजतें हैं वो सारी की सारी स्क्रीन के ऊपर एक साथ आ जाती हैं, अब वो उन चीजों को देखना शुरू कर देते हैं, तो उनके अंदर जो मेच्योरिटी है ना वो बहुत तेजी से आनी शुरू हो जाती है, और जिसकी वजह से अब वो गुनाह की तरफ मायल होते हैं, क्योंकि अभी आप उनका निकाह तो नहीं कर सकते, अभी तो वो इतने छोटे हैं, अभी तो वो स्कूल में पढ़ रहे हैं, अभी तो वो कॉलेज में पढ़ रहे हैं, कमाना नहीं शुरू किया, तो भाई कमाना नहीं शुरू किया इससे ये कोई थोड़ी होता है कि अब उनके अंदर शहवत भी गालिब नहीं आएगी, शहवत भी उसके अंदर पैदा नहीं होगी। ठीक है, तो शहवत तो आपने जो भी आपने उसको बुरे माहौल में डाला, खुद से अपने हाथों से डाला, या अपनी बेएहतियाती की वजह से वो बुरे माहौल में चला गया, तो उसके अंदर ये सारी चीजें तो पैदा हो गई, अब उसने कैसे निकालना है इन चीजों को, तो या तो वो जाके अगर उसको कोई लड़की मिल जाएगी या लड़की को कोई लड़का मिल जाएगा तो वो बाकायदा ऑल द वे जाएगा, और अगर नहीं मिलेगा तो फिर यही करेगा इस्तिमताअ बिलयद, राइट, और इसके जरिए से फिर बड़े बड़े मसले पैदा होते हैं। तो यहाँ पर कम से कम हम आज की क्लास को रोक देते हैं, बिकॉज फिकर की क्लास आपकी स्टार्ट होनी है, इस टॉपिक के ऊपर चंद और बातें और भी हैं जो कि इंशाल्लाह हम अगली क्लास के अंदर करके फिर इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, अगर आपके पास कोई सवाल भी हो तो वो भी अगली क्लास में आप लेकर के आए इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।